देवियों सज्जनों आप सबको नमस्ते। गीता के 13वें अध्याय का आज चर्चा कर रहे हैं। 27वां श्लोक है, मेरे साथ मिलकर बोलिए। समम सर्वेषु भूतेषु सर्वे तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्वविनश्यन्तम् नश्यत्स्वविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति। और एक बार, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्वविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति। He alone truly sees, who perceives the Supreme Being as existing in all beings and as the imperishable among the perishable. जो ये जान देखने का अर्थ जानना, जो ये जानता है, जो ये देख पाता है कि संसार में जो कुछ भी है सबके अंदर वो परम सत्ता परमेश्वर है, ये संसार में जो कुछ भी नष्ट होने वाला विनाश होने वाला चीजें हैं उसके पीछे अंदर कहीं कोने में एक इम्पेरिशेबल अविनाशी तत्व है, जो उस चीज को देख पाता है वही सही मायने में देख पाता है। आम आदमी ऊपर की चीजों को देखता है, आप पेड़ को देखते हैं, पेड़ में फल है, पत्ते हरे हरे हैं और आपको ये पता है कि पेड़ पत्ते हरे होते हैं, फल हरा है, पक जाने पर लाल है, पीला है, जो भी कलर होता है, ये तो सामान्य ज्ञान है जो हर व्यक्ति को पता होता है। पर ज्ञान वही है जब कोई व्यक्ति उसके पीछे के रहस्य को भी जानता है, जिसे अभिज्ञानी कहते हो। विज्ञान का सिंपल मतलब है जो आपसे ज्यादा ज्ञान है, जो विशेष ज्ञान है, जो ये भी जानता है कि ये पत्ते हरे किसके कारण से हैं, क्यों हैं, ये फल क्यों हरे होते हैं, पीले होते हैं, लाल होते हैं, ये पेड़ ऐसा क्यों है, वो तभी होता है जब आप उसके गहराई में जाते हैं, उसके पीछे की ओर जाते हैं, तब पता लगता है। तो हमारे भौतिक विज्ञान ने, मैटेरियल साइंस ने एक बहुत डेवलपमेंट किया और जिसका परिणाम है कि आम आदमी को, जो बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसको भी आप बहुत सारी चीजें कॉमन सेंस पता है कि सूरज क्या है, पृथ्वी क्या है, जो दिखता है वैसा नहीं है। हमें दिखता है कि सूरज चलता है और पृथ्वी स्थिर है, पर अब कम पढ़ा लिखा आदमी को भी, गांव में रहने वाला आदमी को भी ये पता है कि पृथ्वी घूमती है सूरज के चारों तरफ, सूरज नहीं घूमता है। क्योंकि जैसे जैसे पढ़े लिखे ज्ञानी लोगों की संख्या बढ़ती है तो अज्ञानी लोगों के अंदर भी अवेयरनेस पैदा होता है। और शरीर के बारे में भी इसी तरह, पहले बुखार होता था तो बुखार की दवाई खाते थे, अब पता लगा कि बुखार जरूरी नहीं कि बुखार से ही बुखार होता है, गर्म शरीर गर्म हो तभी बुखार होता है, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो फिर आप टेस्ट कराते हैं दुनिया भर के, आप ब्लड टेस्ट लेकर के दुनिया भर के टेस्ट करते हैं, अगर बुखार ठीक नहीं होता है, और झाड़ फूंक वाले के पास नहीं जाते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता है, फिर आप उसके अलग अलग तरह के टेस्ट करते हैं। जैसे जैसे विज्ञान, विशेष ज्ञान होने लगता है तो आपको सही एक्यूरेट चीजों की पता करना आसान होता है। जिसको पता नहीं है वो तब भी ये कॉमन सेंस रखता है कि मुझे प्रॉब्लम का जड़ और कहीं पर है, मुझे अंदर जाना है। दुर्भाग्य हुआ कि जैसे जैसे, क्योंकि हमने मैटेरियल दुनिया की इतना प्रचार किया, इतना उसको ग्लोरीफाई किया, तो लोगों ने उन सब चीजों को तो समझ गए। उस ग्लोरीफिकेशन के साथ साथ हमने एक और चीज को बहुत ज्यादा, हमने इसको राक्षसों के या छोटे लोगों के या बड़े पुराने ख्याल लोगों के रूप में प्रचार किया, वो है कि स्पिरिचुअलिटी या आत्मा को अंदर जाने की ज्ञान जो है। और जिसका परिणाम हुआ कि जो नई पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी का मतलब नहीं कि आज की नई पीढ़ी, हर समय एक नई पीढ़ी होती है, जो जवान होता है, जो टीनेज होता है, जो अपने से पीछे की पीढ़ी को बहुत दफियानो समझता है, छोटा समझता है, पर वो बुद्धू नहीं समझता। तुम जिस फील्ड पर खड़े हो वो उन्हीं लोगों के ज्ञान के बल पर, शक्ति पर, मेहनत पर है जिनको तुम अपने से खराब आंकते हो या छोटा आंकते हो। पर ये शायद इंसानी फितरत है, हर ह्यूमन बींग की नेचर है। जब वो टीन एज में होता है, यंग होता है, उसको लगता है मेरा जमाना सबसे बेस्ट है, ज्यादा मॉडर्न है, मेरे पापा के जमाना ज्यादा पिछड़ा हुआ था। ऐसा नहीं है, हर एक की टीन एज का जमाना मॉडर्न होता है कंपेरेटिवली उसके पीछे के जमाने से। वो अपने यंग एज में बड़े फैशन करते थे, उनका अपना अकड़ था। अब बुड्ढे हो गए, डंडा लेकर चलते हैं तो आपको लगता है ये पुराने आदमी है, हम मॉडर्न है। तुम्हें भी एक दिन डंडा लेकर चलना पड़ेगा, तुम्हारे बच्चे भी कहेंगे मेरा बाप कितना पिछड़ा हुआ है। तो ये तो खैर इंसानी फितरत है। तो जो हर नए जमाने में जो यंग जनरेशन को एक जो फीलिंग होती है, और खास करके इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारे फैमिली ट्रेडिशन से, हमारे परिवार से, कितना भी मां बाप चिल्लाए हम बच्चे को अच्छी शिक्षा देते हैं, पर सबको पता है कि आप अच्छी शिक्षा के नाम पर आप क्या देते हैं। अब टीन एज के बच्चे या यंग एज के बच्चों में जो स्पिरिचुअलिटी के प्रति नेग्लेंसी होती है, या जो उनके प्रति एक इग्नोरेंस हो, या जो खराब दृष्टि से देखने का भाव होता है, उसका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं हमारा समाज, हमारा परिवार होता है। या तो हमारा परिवार इतना ज्यादा फोर्स करता है कि बच्चा रिवोल्ट करता है, या इतना ज्यादा फोकस उनके जो इंटरनली जो फोकस है, जो इंटेंशनली जिसको फोकस करना चाहते हैं, बच्चे समझ जाते हैं। बच्चे समझते हैं कि माँ बाप का जोर पढ़ाई लिखाई करके पैसा कमाने में है, सोशल स्टेटस बनाने में। इन चीजों को तो वो वैसे ही कहते रहते हैं, थोड़ा कहीं हम बिगड़ ना जाए। उनको पता है कि ये रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, ये माँ बाप के लिए कभी प्रायोरिटी नहीं है। वो कितना मुंह में बोलते रहे, तोतों की तरह बोलते रहे, उनकी प्रायोरिटी तो यही है कि मैं अच्छा पढ़ूं, लिखूं, पैसा कमाने लायक हो जाऊं, सोसाइटी में रिपुटेशन कमाऊं और बहुत पैसा कमाऊं। तो बच्चे समझदार होते हैं। आप भी जब बच्चे थे, आप भी अपने मां बाप के अंदर की भाव समझ जाते थे, उसी तरह डील करते थे। आपके घर का कोई बच्चा बहुत बिगड़ा हुआ शैतान और पढ़ाई में तेज हो तो आपको सब इग्नोर करते हैं, क्यों? ठीक है, आपको एक्चुअली इंटेंशनली तो यही चाहिए कि वो बहुत बढ़िया पढ़े। बढ़िया पढ़ने का मतलब किसी का कोई मतलब नहीं कि वो कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, बहुत बड़ा सिंगर, ऐसा कुछ नहीं। पैसा कमाने वाला बने, रेपुटेशन अच्छा बने, तो हम इसको इग्नोर करते हैं। अगर वो कुछ गंदा काम करता है, बुरा काम करता है, इग्नोर करते हैं। बच्चे समझते हैं, आप भी अपने बचपन में समझते थे, हमारे बच्चे भी समझते हैं हमें, और हम भी अपने मां बाप को समझते थे। ये तो क्योंकि फैमिली से, सोसाइटी से, या स्कूल से, कॉलेज से, किसी भी माहौल में मेरे जीवन का जो दूसरा डायमेंशन है उसके बारे में कभी किसी ने फोर्सफुली नहीं कहा, कोई इंटेंशनल इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इसीलिए किसी को इसमें इंटरेस्ट नहीं हुआ कि उसके अंदर जाने के लिए। जैसे हम पेड़ों के बारे में समझे, शरीर के बारे में समझे, दुनिया के बारे में समझे, ये संसार कैसे बना समझे, बाकी सब चीजों के बारे में समझे, उस चीज के बारे में नहीं समझा। असली बात है कि जो व्यक्ति अंदर जाएगा, जो ये शरीर को देखता है कि ये मरता है, पैदा होता है, इसमें जब बचपन आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आती है, ये दिखता है, उसके शरीर में बदलाव दिखता है, उसके मेंटल चेंजेस दिखता है, और वहीं पर हम स्टॉप हो जाते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं। पर जो व्यक्ति उसके भी नीचे जाता है कि इस बदलते हुए शरीर क्यों बदल रहा है, ये मन क्यों बदल रहा है, कोई ना कोई कील तो है जब आप गाड़ी चलाते हैं आपके जो व्हील है वो व्हील तभी घूमती है क्योंकि उसके अंदर का जो स्पोक है, तो उसके अंदर की जो कील है जो स्पोक के साथ व्हील को जोड़े रखता है वो स्थिर होता है, वो स्टडी होता है। वो अगर हिलने लग जाए तो आप गाड़ी नहीं चला सकते, आपकी गाड़ी इधर उधर भागने लगेगी, व्हील तो हिलने लगेगी। आपकी व्हील अच्छी से रन करे, घूमने लगे, जरूरी है कि व्हील का जो बीच का सेंट्रल पॉइंट है वो स्ट्रांग हो। आपकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, जरूर है कि कोई चीज अंदर है जो अनचेंजेबल है, जिसके कारण शरीर में बदलाव आता है। अगर वो अनचेंजेबल चीज आपके शरीर के अंदर नहीं होगा तो फिर बॉडी में बदलाव नहीं आएगा, वो सड़ जाएगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, उसमें बदबू आने लगेगा, आप घर में भी नहीं रखोगे, उसको आप फ्यूनरल होम ले जाओगे। डेड बॉडी में कोई चेंज नहीं आता है सिवाय कि वो डिकेइंग करता है, सड़ता है, गलता है। वो डेड बॉडी क्या है? समथिंग इज मिसिंग, कुछ मिस हुआ है जिसको हम कभी नहीं समझ पाते हैं या कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं। हर चीज विनाशशील है, कोई चीज स्थिर नहीं होता। जो कुछ संसार में आप देखते हैं सब बदलता है। ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी बदलता है, आपके इमोशंस भी बदलते हैं, आपका नफरत बदलता है, आपका प्यार बदलता है। कल तक जिसके लिए आप मर मिटने को तैयार थे, दीवाने थे, आज उसको देखने के लिए भी आपके आपको आपको इच्छा नहीं होती है। कल तक आप जिससे दूर भागते थे आज उसको छोड़ने को आप तैयार नहीं होते हैं। हर चीज बदलता है, आपके इमोशंस बदलते हैं, फीलिंग्स बदलता है, आपकी बॉडी बदलता है, आपके इंटेलेक्ट बदलता है, एवरीथिंग इज चेंजिंग। आप कल तक जो नहीं पता था आप अड़के बैठते थे कि यही सही है, यही सही है, यही सही है। जब कल किसी समझदार आदमी के साथ आप बैठे, आपको कुछ असली बात पता चला, तो आपकी इंटेलेक्ट चेंज होने लगा कि नहीं, कल तक जो जिसके लिए मैं अड़ता था वो गलत था, सही ये है। तो जीवन में हर चीज बदलता रहता है, और अगर कोई चीज सच है नहीं है, ये जो चेंजिंग है, ये जो बदलना है, ये उतना ही इटर्नल है जितना इस संसार की सत्ता है। किसी को नहीं पता कि कल क्या होने वाला, क्योंकि चेंजनेस, बदलना या बदलाव इतना श्योर है, इतनी सर्टन है कि किसी को नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। क्योंकि जो आज है जरूरी नहीं कल वो वैसा रहे। आज आप हेल्दी है कोई जरूरी नहीं कि कल हम हेल्दी रहें। आज हम दुखी हैं जरूरी नहीं कि कल भी हम दुखी ही मिले। सब ठीक ठीक चल रहा है कोई जरूरी नहीं कि 10 मिनट के बाद सब ठीक ठीक चल रहा होगा। कोई जरूरी नहीं है, अगर चल पड़ा वो अलग बात है, पर कोई जरूरी नहीं कि 5 मिनट के बाद सब ठीक चल रहा होगा। माइक कभी चल रही है, कभी कभी बंद हो जाती है, पता नहीं कब बंद हो जाए। इसीलिए फ्यूचर से लोग डरते हैं, क्योंकि सब चीज बदलता है, क्योंकि सब चीज बदलता है और हमें पता नहीं चलता कि कल क्या बदलाव आने वाला है। कुछ चीजों के बारे में तो सर्टेनिटी है कि ये बदलाव आएगा, बचपन के बाद जवानी आती है सबको पता है, पर ये नहीं हम कभी जान समझ पाएंगे कि बचपन के बाद जवानी आएगी या उससे पहले ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि फ्यूचर इतना अनसर्टन है, चेंजिंग इतना सर्टन है। इसीलिए लोगों के अंदर डर बना रहता है। रिलीजन के नाम पर जो कुछ चलता है उसमें 90% डर को कैश करने का होता है। लोगों के अंदर जो फियर फैक्टर है अपने बारे में, अपनी दुनिया के बारे में, अपने परिवार के बारे में, जो खौफ बना है कि कल क्या होगा, यही खौफ को कैश करते हैं रिलीजनों में। उठपटांग सिद्धांत के नाम पर, ईश्वर के अलग उठपटांग कंसेप्ट के नाम पर स्वर्ग नर्ग का डर दिखा के, और हमारे यहां तो और भी एक रिलीजन के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, ये आर्किट, हजारों तरह के चीजें जुड़ा हुआ है, भूत प्रेत, ये सब इंसान की उस खौफ को जो चेंज से डरता है, जिसको पता नहीं कि कल क्या होगा, उसको कैश करने के लिए, उसको ये सेटिस्फाई करने के लिए कि नहीं सब ठीक हो जाएगा अगर ये करोगे वो करोगे, तो ये संसार चलता है। रिलीजन और रियलिटी दो डिफरेंट चीजें हैं। रियलिटी जो ईश्वर को समझना, उसकी उपासना करना, खुद को समझना और जानना, जिसको आप आध्यात्मिकता कहते हैं। रिलीजन जहां ब्लाइंडली आपको फेथ करना होता है, किसी ने कुछ बोला या किसी परंपरा चलती आ रही है, कोई कस्टम चलता आ रहा है, कोई ट्रेडिशन चलता आ रहा है, किसी कोई प्रीस्ट बोलता जा रहा है, और हम ब्लाइंडली विदाउट यूजिंग आवर कॉमन सेंस इंटेलेक्ट एनीथिंग जब हम उसको बिलीव करते हैं, और विदाउट यूजिंग मतलब कोई एहसान नहीं है, क्योंकि हमारे फ्यूचर के प्रति जो डर है उससे थोड़ी तसल्ली मिलती है, उससे थोड़ी शांति मिलती है, थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है, लगता है कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, अगर मैंने यहां पूजा की, अगर मैंने कन्फेस की, अगर मैंने ये किया, अगर मैंने ये अमुक नदी में नहाया, अमुक स्पिरिचुअल स्क्रिप्चरल रिलीजियस स्क्रिप्चर पढ़ा, तो मेरा फ्यूचर सब ठीक ठीक रहेगा। ये डर का क्या से उसके पीछे कोई रियलिटी नहीं होती है। ये इसीलिए कि वो चेंजिंग इतनी सटन है, इसीलिए इस यूनिवर्स को, आपको पता है हमारी भाषा में इस यूनिवर्स को क्या कहते हैं, हिंदी में, संस्कृत में, आपकी जो भी भाषा है, मराठी, तमिल, जो भी भाषा आप बोलते हैं, संसार या जगत कहते हैं। संसार का क्या मतलब, यूनिवर्स का जितना भी वर्ड है इंडियन लैंग्वेज में, संस्कृत से डिराइव हुए, वो सब शब्द का मतलब होता है ट्रांजिटरी, जो ऑलवेज इन मूविंग मोशन, जो हमेशा सेटिंग ऑन मोशन। संसार का भी यही मतलब है, सम्यक सरति इति, जो हमेशा सरकता रहता है, घूमता रहता है। जगत का भी यही मतलब, जो गतिशील है, गति करता रहता है। हर चीज इज मूविंग, जो मूवमेंट हो तो नेचुरली चेंजेस आता है। पर ये दुनिया मूव करती है, आपका जीवन भी मूव करता है, क्योंकि उसके अंदर कोई अनचेंजिंग अनचेंजेबल फैक्टर है, जो अनमूवेबल फैक्टर है, जिसको बेस बना के दुनिया बदलती है। जो लोग वहां तक पहुंच जाते हैं, वो एक्चुअली देखते हैं, वही रियल नॉलेज है, वही देखना देखना है, बाकी तो झूठ की दुनिया है। संसार में जो कुछ शाश्वतता है, जो इटर्निटी है, उसको जो देखता नहीं है, वो आम आदमी की तरह पत्ते के हरेपन को देख करके तो खुश रहता है, पर उसको पता नहीं कि पत्ता हरा क्यों है, काला क्यों है, सफेद क्यों है। और जो उसके बैकग्राउंड को जाता है वही देखता है, लहरों को देख करके और ज्वारों को देख करके। पानी के लहर आते हैं समुंदर में और वापस चले जाते हैं, इसी को देख करके अगर आप समझते हैं यही समुद्र है, ये गलतफहमी है। ये तो किनारे किनारे होते हैं। समझदार आदमी वो है जो इस लहर और ज्वार के पीछे की जो शांत समुद्र है उसको भी जानता है ना। समुद्र वैसे शांत है, बहुत शांत है, किसी भी शांत आदमी से ज्यादा शांत समुद्र है। पर जो समुद्र के किनारे जाते हैं, सबका यही राय है कि समुद्र बहुत चंचल है, बहुत उतावला है। क्यों? वो समुद्र के किनारे के लहरों को देखते हैं, और जो कि हर मोमेंट में बदलता रहता है, आता है फिर वापस चला जाता है, आता है फिर वापस चला जाता है। तो जो किनारों से वापस आ जाते हैं, उनके लिए समुद्र का जो परसेप्शन है वो ये है कि जो बदलता रहता है, जिसके पानी हमेशा उछलते रहते हैं। पर जो थोड़ा मेहनत करके अंदर जाता है, थोड़ा आधा किलोमीटर अंदर चला जाए, आधा माइल अंदर चला जाए, एक माइल अंदर चला जाए, उसको पता लगता है समुद्र का पानी कितना शांत है। इसी तरह आपके जीवन में जो उथल पुथल मचा हुआ है, आपके शरीर के उथल पुथल तो कम मचता है, वैसे आपको शरीर दिखता है, पर आपके माइंड में सबसे ज्यादा उथल पुथल मचता है। रात को नींद नहीं, दिन में बेचैन नहीं, दिन रात बेचैनी में रहते हैं, हजारों तरह के, जब कुछ भी नहीं करते तो भी आपके दिल में, आपके माइंड में हजारों चीजें चलते रहते हैं, पता नहीं अच्छा बुरा, ब्लैक व्हाइट ग्रे कलरफुल, हमेशा लहरें ज्वार आते रहते हैं, और हम उसी को देखते हैं। अपने बारे में भी वही, दूसरों के बारे में तो छोड़िए, हम अपने बारे में भी उतने ही देखते हैं, माइंड में जो वो उछाल आता रहता है 24 घंटे अन्य से शरीर, उसमें से अगर आप नोट करेंगे उसमें से 99% यूजलेस है, आपका किसी काम का नहीं, उससे आपको रत्ती भर का फायदा नहीं, पड़ोसी को हो ना हो, आपके दुश्मन को हो ना हो, आपके दोस्तों को हो ना हो, आपको तो उससे 99% की फायदा नहीं। जो माइंड में हमारे विचार चलते रहते हैं वो हमारे लिए ही यूजलेस होते रहते हैं, पर हम उसी को अपना समझ के बैठ जाते हैं। पर जब थोड़ा और अंदर चले जाते हैं पता लगता है मेरा जो असली आइडेंटिटी है वो कितना शांत है, कितना आनंदमय है, कितना पूर्णता से भरा हुआ है। व्यक्ति जन्म हुआ, जवान हुआ, बुढ़ापा आई, मृत्यु आया, पर इस जन्म मृत्यु के पीछे जो चीज है जो कभी मरता नहीं, पैदा नहीं होता है, जिसको आप कहते हैं अनंत शाश्वत, वो सबके अंदर समान है, समम सर्वेषु भूतेषु। जब आप बाहरी दुनिया से देखते उसको फिजिकली ऑब्जर्व करते, जब आप उसकी मेंटली आप उसको देखते तो वो आपसे अलग है, हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। पर जब आप उस गहराई में चले जाते हैं जहां कोई मोशन नहीं है, जहां कोई चेंज नहीं है, और वो जो अनचेंज्ड फॉर्म है, कमाल की बात है कि वो सब व्यक्ति में समान है। व्यक्ति का मतलब इंसान नहीं, हर पशु में, पक्षी में, प्राणी में, पेड़ों में, इंसान में, सब जगह समान है। जन्म मृत्यु तो सिर्फ पड़ाव होता है, जो उस बदलाव के अंदर न बदलने वाले चीज को समझ जाता है वही एक्चुअली देखता है। आगे बोलिए, समम पश्यन् हि सर्वत्र, सर्वत समवस्थितमीश्वरम्, नहि नास्त्यात्मनात्मानम्, ततो याति पराम गतिम्। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्, नहि नास्त्यात्मनात्मानम्, ततो याति पराम गतिम्। समं पश्यन् हि सर्वत्र, जो व्यक्ति रियलिटी में देखता है क्या कि सबके अंदर वो एक तत्व है जो इक्वल है, जो बराबर है, सबके अंदर वो एक ही है। जब ऐसा देखना हो जाए, He who beholds the Lord present everywhere equally, realizing this, he doesn't injure the self by the self. Therefore, he attains the supreme goal. मजेदार बात यह है, जो चीजें हम कहते हैं हमारे किताबें वो बातें नहीं करते हैं। हम क्या सोचते हैं कि जब आदमी अच्छा हो जाए वो दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। वायलेंस का तो यही अर्थ है ना कि आप दूसरे को चोट नहीं पहुंचाते हैं। शास्त्र कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि को जो रियलाइज्ड हो जाता है वो दूसरों को चोट नहीं पहुंचाएगा। वो ज्यादा सेल्फिश होते हैं, वो कहते हैं वो खुद को चोट नहीं पहुंचाएगा। देवियों सज्जनों, जो खुद को चोट पहुंचाना जानता है, पहुंचाता है, वही सिर्फ दूसरों को चोट पहुंचा सकता है। जो खुद को समझता है, जो जानता है कि मारने से दर्द होता है अपने को, वो दूसरों को दर्द नहीं देता है। जो स्मार्ट सेल्फिश है वो हमेशा दूर की सोचता है, और जो स्टूपिड सेल्फिश है वो आज का सोचता है और आज की फायदे के लिए अपनी कल को बर्बाद करता है। जनरली जो सेल्फिश लोग, जिनको आप कहते हैं, जो अपने आप को स्मार्ट समझते हैं क्योंकि वो ज्यादा सेल्फिश हैं, वो दूसरों को यूज करना जानते हैं, पर वो भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए मोमेंटरी अचीवमेंट तो मिलता है जब आप गलत चीजों का सहारा लेते हैं, पर लॉन्ग टर्म के लिए आपको ज्यादा हानि उठानी पड़ती है बनिस्पत जिसको आपने हानि पहुंचाया। तो जो व्यक्ति सब में खुद को उस एक ही सत्ता को बराबर रूप में देखता है वो खुद को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमने जिंदगी में जो कुछ भी किया है या करते हैं, यकीन मानिए वो हमारे भलाई के लिए कम होता है। भलाई के लिए इन द सेंस मोमेंटरी भलाई के लिए तो होता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं होता है। आप उस लीडर को महान मानते हैं ना जो लीडर बड़ा फार व्यूइंग रखता है, जो लंबा दूर दृष्टि रखता हो, जिसकी पॉलिसी सिर्फ आज के फायदे के लिए नहीं है, जो हजारों सालों के फायदे के लिए सोच के बनाता है, उस लीडर को आप दूरदृष्टि संपन्न मानते हैं, है ना? उसी को आप फोर व्यूअर मानते हैं कि जो दूर तक सोचता है। एक नालायक नेता, द स्टूपिड नेता क्या करेगा? पॉपुलर बनने के लिए हो सकता है कि उसके देश में जितने भी माइंस हैं उसकी जो प्रोडक्शन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा दे, वो गैस हो, वो कोयला हो, वो मिनरल हो, वो मेटल हो, कुछ भी हो, बढ़ा दे। और नेचुरली, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो सामान सस्ते में मिलेंगे, पब्लिक वाहवाही करेगी, देखो कितना बढ़िया प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सब चीजें सस्ता हो गया। पर हजार साल, चार पीढ़ी के बाद, पांच पीढ़ी के बाद, दस पीढ़ी के बाद या बीस पीढ़ी के बाद, उस देश में एक बूंद ना पानी मिलने वाला, ना गैस मिलने वाला, ना मिनरल मिलने वाला, वो उनका क्या होगा? तो जो दूरदृष्टि नेता को भी आप उसी को रेस्पेक्ट करते हैं। दुनिया में जितने भी महान पुरुष आप मानते हैं, क्यों महान मानते हैं? अच्छे काम करने वाले तो बहुत लोग होते हैं, महान इसीलिए मानते हैं कि उनका, उन्होंने जो कुछ किया या जो सोचा वो लॉन्ग टर्म फायदे के लिए देश या दुनिया के लिए है। और जिन्होंने शॉर्ट टर्म प्लान बनाते हैं वो थोड़ी बहुत फायदा तो होता है, नुकसान ज्यादा होता है। आप में से तो बहुत सारे शेयर में भी पैसा लगाते होंगे या लगाए होंगे। जो भी शॉर्ट टर्म में लगाता है, मोटा मोटा कभी आ भी जाता है, कभी कभी तीन गुना चार गुना डूब भी जाता है ना? जो लॉन्ग टर्म सोच के बनाते हैं तो उनके थोड़ी स्टेबिलिटी बनी रहती है, यही फर्क है। जो लंबा सोचता है, हमने जीवन में भी हम बड़ा शॉर्ट टर्म प्लान करते हैं। शॉर्ट टर्म प्लान क्या है? मेरी लाइफ 75 इयर्स की मैक्सिमम है, 80 इयर्स है, 90 इयर्स है, 100 इयर्स है, पर यही लाइफ तो नहीं है, आगे की जिंदगी बहुत पड़ी हुई है। फिर मुझे जन्म लेना है, फिर पैदा होना है, फिर बढ़ना है। मैं अगर सिर्फ 75 इयर्स की प्लानिंग करता हूं और वो 75 इयर्स की प्लानिंग में मैं इतना कमाता हूं कि मैं 1000 साल तक जीऊं तो भी भोग सकता हूं, पर समस्या है कि मेरी लाइफ तो मैक्सिमम 75-80 इयर्स है या 100 इयर्स 100 साल का है, पर मैंने जो कमाया इस शरीर को बचाए रखने के लिए वो तो मैं 1000 साल गुजारा कर सकता हूं। तो क्या होगा? बाकी 900 साल का प्रॉपर्टी क्या होगी? भूत खाएंगे। हमारे यहां संस्कृत में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, उस श्लोक कहते हैं धनस्य तीसरा गतयः। पैसे की तीन तरह की रास्ता होता है, तीन तरह की दशा होती है, स्टेट होता है। एक तो दानम भोग, या तो आप उसको दूसरों को बांट दो, खुद भोगो, पहले तो खुद भोगो, दूसरों को बांट दो, जिसने खाया नहीं कि दिया नहीं। तृतीय विनाश, उसका विनाश होता है। विनाश क्या होता है? उसके बच्चे खाते हैं, और बच्चे खाते हैं तो बच्चे नालायक, जब फ्री में मिलेगा तो मेहनत थोड़े ही करेंगे, तो आप अपनी अगली पीढ़ी को करप्ट बनाते हो, क्योंकि उनको जो तुमने मेहनत से कमाया वो उनको फ्री में देते हो। और कुछ लोग तो अपने सैकड़ों पीढ़ियों के लिए बचा के चले जाते हैं, भूल जाते हैं, क्या पता सैकड़ों पीढ़ियों तक ये धरती बचेगी नहीं बचेगी। कितने देखा, कितनी पीढ़ियों को हमने बर्बाद कर दिया, कितने लड़ाइयों में, कितने तरह के बीमारियों में। अगर उतने मेहनत हम अपने जीवन के लिए करते, अपनी अगली पीढ़ी की अपने होते हुए लायक बना देते, बाकी समय हम अपने आगे की फ्यूचर प्लानिंग करते, अगले लाइफ के लिए प्लानिंग करते, तो वो स्मार्ट डिसीशन होता है। इसीलिए हमारे संस्कृति में हर व्यक्ति को, जो व्यक्ति की जो लाइफ स्टेज है, उसको चार भाग में बांटा गया कि पहले क्वार्टर तो आप खुद सीखो, समझो, जानो कैसे जीना है, कैसे कमाना है, जिसको आप स्टूडेंट लाइफ कहते हो। हमारी भाषा में हम उसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहते थे। अब जो तुमने सीखा पढ़ा जाना अपनी फिजिकली मेंटली इंटेलेक्चुअली जो तुमने अपने आप को बनाया उससे आप कमाओ, उसको कैश करो, उसको भोगो गृहस्थ आश्रम में, जितना भोगना है भोगो। पर जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लायक हो जाएं, वो शादीशुदा हो जाएं, वो भी मां बाप बन जाएं, मतलब जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक हो जाएं, अब तुम कमाना छोड़ दो, भोग कम कर दो, कमाना छोड़ दो। अब लोगों ने इंटरप्रेट किया कमाना छोड़ दो मतलब काम छोड़ देंगे, काम छोड़ने के लिए नहीं कहा, कमाना छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए कि जितना चाहिए वो इतना नहीं है कि जितना तुम कमाते हो, बाकी जो काम करते हो करते रहो, सोसाइटी के लिए करो, अब तुम दुनिया के लिए करो, समाज के लिए करो, पशु पक्षियों के लिए करो, इंसान के लिए करो, काम उतना ही करो, उतने ही टाइम दो, उससे ज्यादा दे सकते हो तो दो, पर अब फैमिली के लिए नहीं, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद उठाएंगे। हर व्यक्ति को खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, नहीं तो आप एक पीढ़ी को करप्ट करते हैं, उनको मेहनत करने से बचाते हैं तो बीमारियां पैदा होती है। हर नई जनरेशन बीमारी लेकर के आता है, 10 साल के बच्चे को डायबिटीज दिखता है, हार्ट प्रॉब्लम दिखता है 30 साल के बच्चे को, क्योंकि हम उनको बैठ के खाने की तालीम देते हैं, हम कमाते हैं और हमारे खाने पर तुम पड़ लो। तो अब तुम कमाना छोड़ दो, काम करो, समाज के लिए करो, सोसाइटी के लिए करो, देश के लिए करो, जिसके लिए कर सकते हो करो, करते रहो, और धीरे धीरे अपने आप को भी अपने लिए थोड़ा बहुत करना शुरू करो, अपने मतलब आप बॉडी के लिए नहीं, माइंड के लिए नहीं, इंटेलेक्ट के लिए नहीं, वो तो तुम करते रहते हो, अब थोड़ा बहुत उसके नीचे जो अनमूवेबल अनचेंजेबल जिसके कारण तुम्हारी एग्जिस्टेंस है उसके बारे में थोड़ा सोचो, क्योंकि आफ्टर ऑल जब मरोगे वही तो वहां जाएगा, नए जन्म लेगा, नए परिवेश में जाएगा, उसके लिए प्रिपरेशन करो। उसको हम कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम। जब वानप्रस्थ आश्रम में आपको मैच्योरिटी आने लग जाए, आपको लगे कि आपने सफिशिएंट कर दिया, फैमिली के लिए कर दिया, गृहस्थ आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम में सोसाइटी के लिए किया और सोसाइटी के लिए करते करते अपने डिटैचमेंट की इतनी प्रैक्टिस कर दी, अब आपको दुनिया में बहुत ज्यादा कोई प्यार मोह अटा नहीं है, अब आप टोटली अपने लिए टाइम डिवोट करो। ब्रह्मचर्य आश्रम में आपने ट्रेनिंग ली आपको कैसे जीना है, गृहस्थ आश्रम में आप फिजिकली मेंटली इंटेलेक्चुअली एंजॉय करने के लिए आपने जो कुछ कमाना है कमाया, ये जो अटैचमेंट है फैमिली वो भी मेंटली होता है। वानप्रस्थ आश्रम में आप सोशियली जो आपकी ड्यूटीज हैं वो आपने निभाया, थोड़ी बहुत अपने लिए करने की कोशिश की, संन्यास आश्रम 100% अपने लिए, टोटली सेल्फिशनेस, सिर्फ अपने लिए, अपनी अगली अपने यात्रा की अगली तैयारी के लिए मेहनत करो, अपने बारे में सोचो, अपने मतलब जब मैं अपने कहता हूं तो ये बॉडी मत समझो, ये माइंड ना समझो, आप बहुत सारे चीजों का बना हुआ है, आप बॉडी हो, माइंड हो, इंटेलेक्ट हो और उसके नीचे सोल हो। बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के लिए तो लाइफ का आपने 3/4 दे दिया, 100 साल का 75 साल दे दिया, अगर 70 साल जीते हो तो 40-45 साल दे दिया, बाकी 10-15-20 साल सिर्फ उसके लिए दो जो तुम ओरिजिनली हो, उसको देने की कोशिश करो। पर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम पूरी लाइफ में जो कुछ करते हैं अगर आप उसको काउंट करने लगेंगे, जिस दिन आप मरेंगे मैं मरूंगा उस दिन वो सब मेरे लिए यूजलेस है, उस दिन वो मेरे लिए कोई यूजफुल नहीं है, मीनिंगलेस है, मैं साथ कुछ नहीं लेकर जा सकता, ना वो नाम जो मैंने कमाया, ना वो काम जो मैंने कमाया, वो जो बड़ा घर मैंने बनाया, जो बड़ी बैंक बैलेंस बनाई, जो रेस्पेक्ट मैंने कमाया, जो डिग्निटी मैंने कमाया, वो कुछ नहीं साथ जाने वाला है। सज्जनों देवियों, इसका अर्थ ये नहीं कि आप ये सब नहीं करेंगे, ये कहने वाला तो और भी बुद्धू है, ये सब जरूरी है, एक लेवल तक जरूरी है, पर ये साथ नहीं जाएंगे ये समझना भी जरूरी है। उतना कमाओ इन सब चीजों को, उतना रिस्पेक्ट कमाओ, उतना पैसा कमाओ, उतना घर लो, जितने तुम्हें इस लाइफ में खुशी से रहने के लिए जरूरी है, बाकी उसके बाद क्या है। मरते समय ऐसे बड़ा डॉक्यूमेंटेशन हुआ एक बार सर्वे में, ज्यादातर लोग एक बुक मिलता है कि मरते समय लोगों का रिपेंटमेंट प्रायश्चितता क्या है। 95% लोगों ने कहा कि हम जीवन में जो कुछ किया उससे हम खुश नहीं है, हम कुछ चीजें हम नहीं कर पाए जो शायद इस वक्त काम आता, ऐसा हम नहीं कर पाए। पर समस्या है कि जब आपको ये दुख होता है तब आप करने लायक हम नहीं होते हैं, तब हम डाइंग स्टेज पर होते हैं, तब हम बेड पर होते हैं, तब हाथ नहीं चलता, पैर नहीं चलता, चलता भी हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर बोल चुका है 15 दिन का है, 1 महीने का है, 2 महीने का है, तब हमसे कुछ होगा नहीं। इसीलिए समझदारी यही है, समझदार व्यक्ति वही है जो जिंदगी के पहले पड़ाव से हर तैयारी करता जाता है। जैसे हम जिस दिन से कमाने लगते उस दिन से हम प्लानिंग कर देते हैं, कितना मैं डेली लाइफ डेली खर्च करूंगा, अपने डेली एक्सपेंडिचर करूंगा, कितना सेविंग करूंगा बच्चों की पढ़ाई के लिए, कितनी सेविंग करूंगा मैं रिटायरमेंट के लिए, वगैरह वगैरह प्लान कर देते हैं। और जो प्लानिंग करके चलता है उसकी लाइफ में खुशी आती है। अगर आपने कमाया और सब उड़ाया, रिटायरमेंट के समय आपके पास कुछ है ही नहीं है, तो आप जिंदगी भर दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, आगे की जिंदगी में कुछ दिखता नहीं है। पर प्रॉब्लम है कि बहुत सारे समझदार लोग रिटायरमेंट के लिए भी तैयार कर लेते हैं पर भूल जाते हैं इससे आगे भी लाइफ है, और समझदार होने के लिए उससे आगे की भी तैयारी करनी पड़ती है। मौत अगर आज आ जाए साथ लेकर कुछ नहीं जाएंगे, खाली हाथ जाना पड़ेगा है? कहते हैं ना वो कबीर की गाथा में, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। ऐसी चीज जुटाने में पूरी जिंदगी बिता देते हैं जो इस जिंदगी के बाद कहीं नहीं काम आएगा। वो जरूरी है, ऐसा नहीं कि वो जरूरी नहीं है, पर वो सब कुछ नहीं है। जिंदगी में और भी कुछ जाने के लायक होता है, 4 पैसे के लिए, एक घर के लिए, थोड़ा सा नाम कमाने के लिए। आदमी कितने पापड़ बेलता है, कितना झूठ बोलता है, फरेब करता है, कितने तरह के गड़बड़ काम करता रहता है, वो ना करके भी हम कमा सकते हैं पर भूल जाते हैं। ये धोखा, बेईमानी, झूठी, फरेब, स्मार्टनेस, ये सब चीजें करके हम वो तो पा लेते हैं जो दिखता है, पर वो खो जाते हैं जो नहीं दिखता है। वो हम पा लेते हैं जो बॉडी को माइंड को सेटिस्फाई करे, हम खो, और पर जो दिखता नहीं है वो अदृश्य, जो हमारा कर्म संस्कार जो आगे जाकर के हमारे लाइफ को डिसाइड करेगा, वो आत्मा जो अदृश्य है, आपका पुनर्जन्म जो अदृश्य है, जो आपके कर्मों का संस्कार जो अदृश्य है, उसको हम खो जाते हैं। इसीलिए कहा कि जो वही देखता है जो उस बदलाव के अंदर ना बदलने वाले चीजों को देख सकता है, और जब वो ना बदलने वाले चीजों को देखता है वो और कुछ करे ना करे खुद से खुद को नहीं मारता है। खुद को खुद से नहीं मारता मतलब वो अपनी तैयारी बनाए रखता है, किसी भी परिस्थिति में कभी भी वो अपनी बर्बादी का कारण ना बने। कठोपनिषद में एक श्लोक आता है, कह के खत्म करते हैं, यह चेद अवेदित अथ सत्यम अस्ति, यह चेद नावेदित अथ महति विनष्टि। अगर अभी समझ गया, इसी जीवन में समझ गया तो तुम्हारा भला है, अगर नहीं समझ पाया बड़ी बर्बादी है। पता नहीं कितने जन्म और लग जाएंगे, पता नहीं अगले जन्म में मैं इंसान बनूंगा या कीड़ा मकोड़ा गाय बकरी बनूंगा। अगर इंसान नहीं बना तो फिर कितने जन्म लग जाएंगे मुझे फिर इंसान बनने में, फिर इंसान बनूंगा फिर समझ आएगा, क्योंकि इंसान में ही तो समझ आता है, फिर समझ आएगा। अगर वो भी हमने बिता दी फिर पता नहीं कितने जीवन के लिए मैं अपना नर्क बना दूंगा। देवियों सज्जनों, इसीलिए कहा समझदार व्यक्ति वही है जो प्लानिंग करके चलता है, और प्लानिंग जो लॉन्ग टर्म सोच करके चलता है, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट नहीं, वो हर शॉर्ट टर्म में भी इन्वेस्ट करता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करता है। जीवन के साथ यही है, जो शरीर का भी ख्याल रखे, मन का भी ख्याल रखे, बुद्धि का भी ख्याल रखे, और जो आत्मा का भी ख्याल रखे वो फिर खुद को नुकसान नहीं पहुंचाता। और यकीन मानिए जो खुद को नुकसान नहीं पहुंचाता वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप बड़े इंटरेस्टिंग चीज करके कहे साइकोलॉजिकल बात, दुनिया में जितने भी आप देखेंगे बहुत क्रूर व्यक्ति पैदा हुए, वो हिटलर हो, स्टालिन हो, कोई भी हो, नेपोलियन हो, जो भी हो, जिन्होंने भी दुनिया में बर्बादी छाई, जिन्होंने बर्बादी किया, लोगों को मारा काटा जो करे, अगर आप उनके साइकोलॉजी को स्टडी करेंगे, वो कॉम्प्लेक्स से भरे हुए लोग होते हैं, जिनके अंदर फिजिकली मेंटली इंटेलेक्चुअली कोई ना कोई कमी है, जिनको अपने बचपन में या जवानी में काफी ह्यूमिलिएशन सहने को मिला उनकी कोई डिफेक्ट के कारण। वैसे तो बहुत सारे लोगों में कुछ ना कुछ कमी होता है, पर जो कमी के कारण उसको दिल में बांध लेता है फिर वो बर्बाद हो जाता है। इसीलिए जब आप पूरी तरह चारों चीजों को ध्यान देते हैं तो फिर आप उस हिंसा से भी मुक्त हो जाते हैं, आप इतने शांत होते हैं, इतने कोमल हो जाते हैं, इतने सेंसिटिव हो जाते हैं, फिर तो आप पैर भी रखते समय आपको सोचना पड़ता है कि मेरे कारण किसी को दर्द तो नहीं हो रहा है। अभी तो हम अपने स्वार्थ के लिए कितने लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली दुखी पहुंचा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे दिल में भी फर्क नहीं पड़ता, पर समझ आ जाए तो पैर रखने में भी हम सोचते हैं किसी को चोट ना आए। ये किसी को सिखाने पर नहीं आएगा, ये शास्त्र पढ़ने से ये नहीं आता है, ये अंदर से आता है। अंदर से तभी आता है जब आप स्मार्ट होते हैं, स्मार्ट सेल्फिश होते हैं, बिल्कुल समझदारी स्वार्थी होते हैं, तभी आप अपना भला कर सकते हैं, दूसरों का भी भला कर सकते हैं। जो व्यक्ति उस विनाशशील चीजों में अविनाशी चीजों को सब जगह देखता है वो खुद को नुकसान नहीं करता है। आगे की चर्चा फिर आगे की सत्र में करेंगे, सत्र में यहीं इसी बात को रखते हैं। ओम शांति शांति शांति।